रात का खाना खत्म होने के बाद घर में धीरे धीरे सन्नाटा उतरने लगा था। एक एक करके सभी अपने कमरों में चले गए थे। गलियारों में बस हल्की रोशनी रह गई थी और दूर कहीं घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अपने कमरे में सादिया बेड के किनारे बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक लैटर था जिसे वो बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, जैसे उसमें लिखी कोई बात उसे बेहद दिलचस्प लगी हो। उसी वक्त बाथरूम का दरवाज़ा खुला। रेहान कपड़े बदलकर बाहर आया था। उसने अभी अभी शर्ट पहनी थी और अपने बालों को हाथ से ठीक करते हुए कमरे में आया। जैसे ही उसकी नज़र सादिया पर पड़ी, वो थोड़ा रुक गया। सादिया अभी भी उसी कागज़ को पढ़ते हुए मुस्कुरा रही थी। रेहान को उसकी वो मुस्कान कुछ अजीब लगी। वो बेड पर उसके पास आकर बैठ गया और हल्के से पूछा, क्या है? सादिया ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर बिना कुछ छिपाए वो कागज़ उसकी तरफ पढ़ा दिया। ये मुझे हाल में मिला था, नीचे गिरा हुआ। रेहान ने कागज़ अपने हाथ में ले लिया। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। सादिया ने जैसे कैजुअली कहा, लगता है नूर की किताब से गिर गया होगा। रेहान अब उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगा। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। जैसे जैसे उसकी नज़रें उस कागज़ पर लिखी पंक्तियों पर घूमती गईं, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। तुम पास बैठो तो दिल संभालना मुश्किल हो जाता है। ये नज़रें भी बड़ी बेवफा हैं, बार बार तुम्हारी तरफ ही चली जाती हैं, जैसे इन्हें भी तुमसे इश्क हो गया हो। फिर अचानक उसकी नज़र आखिरी लाइन पर जाकर ठहर गई। वहाँ एक नाम लिखा था, साकेत। रेहान की आंखें कुछ पल के लिए उसी नाम पर टिक गईं। उसने फिर से वो नाम पढ़ा, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो कि उसने सही देखा है। सादिया चुपचाप उसके चेहरे के बदलते भाव देख रही थी। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है नूर की जिंदगी में साकेत अभी भी कहीं मौजूद है। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा हुआ वो लैटर थोड़ा कस गया था और उसके दिमाग में अब कई नए सवाल जन्म ले चुके थे। सादिया ने जैसे ही रेहान के हाथ से वो लैटर लिया, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है नूर परेशान होगी, बहुत ढूंढ रही होगी इसे। इतना कहकर उसने कागज़ को मोड़ा और कमरे से बाहर निकल गई। रेहान कुछ पल वहीं बैठा रह गया। उसके हाथ खाली थे, मगर दिमाग में जैसे तूफान चल रहा था। अब तक वो नूर को एक अलग नज़र से देखता आया था। उसके लिए नूर एक सीधी साधी मासूम लड़की थी जो इन सब बातों से दूर रहती है। लेकिन अब, पहले अरमान और अब ये साकेत। रेहान के मन में एक अजीब सी कड़वाहट बढ़ने लगी। उसने मन ही मन सोचा, शायद मैं ही गलत था, शायद नूर उतनी सीधी नहीं है जितना मैं समझता रहा। एक तरफ अरमान के साथ घूमना और दूसरी तरफ साकेत के नाम के खत। उसके मन में शक गहराने लगा था। अब उसे लगने लगा था कि शायद नूर उन लड़कियों में से है जो एक साथ कई रिश्ते संभालती हैं, या कम से कम लोगों को उलझाकर रखती हैं। उधर अरमान की सोच बिल्कुल अलग थी। अरमान के लिए नूर कोई चालाक लड़की नहीं थी। अरमान को लगता था कि नूर को बस कोई ऐसा चाहिए जो उसे समझे, जो उसके साथ बिना किसी शर्त के खड़ा रहे। और कहीं ना कहीं अरमान खुद को वही इंसान समझने लगा था। इसी बीच एक और कहानी चल रही थी। फैजान कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग पर जाने वाला था। जाने से पहले उसका मन कर रहा था कि वो एक बार अपने घर होकर आए। वो घर वही पुरानी हवेली जिसे अब माहिरा गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी कर रही थी। वही घर जहां फैजान का जन्म हुआ था, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। फैजान और सादिया अपने मॉम डैड की मौत से पहले वहीं रहते थे। वो हवेली बहुत बड़ी थी और हर कोना उसके लिए यादों से भरा हुआ था। आज अचानक उसे अपने मॉम डैड की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए उसने तय किया कि वो आज ही वहां जाएगा। आमतौर पर घर के कामों के लिए एक छोटी गाड़ी होती थी जिसे फैजान ही ले जाया करता था, लेकिन आज वो गाड़ी खराब हो गई थी। इसीलिए वो अरमान के पास गया और कहा, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए थी, थोड़ा ज़रूरी काम है। अरमान ने बिना ज़्यादा सवाल किए चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। ले जाओ। अरमान ने उसे मना नहीं किया। फैजान चाबी लेकर बाहर लॉन में आ गया। वो कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसकी नज़र पानी की मोटर पर पड़ी। मोटर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो रुक गया और झुककर उसे देखने लगा। उधर उसी वक्त अरमान धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चला गया। छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने जेब से फ़ोन निकाला और नूर को एक मैसेज भेजा, छत पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैसेज भेजने के बाद वो रेलिंग के पास खड़ा हो गया। उसकी नज़रें सीढ़ियों की तरफ टिक गईं। वो जानता था, नूर। नूर ने जैसे ही फ़ोन पर आया मैसेज पढ़ा, वो बिना कुछ सोचे कमरे से बाहर निकल गई। उसी समय सादिया,
जो नूर का लेटर वापस रखने के लिए उसके कमरे की तरफ आई थी, उसने नूर को बाहर जाते हुए देख लिया। सादिया कुछ पल वहीं खड़ी रही, जैसे उसने किसी राज को पकड़ लिया हो। फिर वो धीरे से कमरे में दाखिल हुई। कमरे में रेहान मौजूद था। सादिया ने इधर उधर देखा, फिर ऐसे बोली जैसे वो बस सामान्य बात कर रही हो, अरे ये लड़की भी ना कहीं दिखी नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई, कमरे में भी नहीं है। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, मगर उसके शब्द साफ साफ रेहान को सुनाने के लिए थे। रेहान पहले से ही नूर के बारे में सोच रहा था, अरमान और अब साकेत। सादिया की बात सुनते ही उसके मन में शक और गहरा हो गया। इस वक्त कमरे में नहीं है तो कहाँ होगी? उसके दिमाग में तुरंत एक ही नाम आया, अरमान। रेहान बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदम तेज थे, वो सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसका पैर बाहर रखे एक गमले से टकरा गया। ठक। आवाज हल्की थी, मगर रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे गई। छत के कोने में खड़ी नूर चौंक गई। लगता है कोई है, उसने धीमी आवाज में कहा। अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, चलो उधर छुप जाते हैं। छत के एक कोने में दीवार के पास गहरा अंधेरा था। दोनों जल्दी से वहां जाकर बैठ गए। उसी वक्त रेहान छत पर आ गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छत पर हल्की हवा चल रही थी, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। नूर की सांसें तेज हो गई थी। उसे पता था आज रेहान भाई का मूड बहुत खराब है। अगर उन्होंने उसे अरमान के साथ देख लिया तो क्या होगा वो सोच भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो बिल्कुल चुप बैठी रही। तभी अचानक गेट से कार के बाहर निकलने की आवाज आई। रेहान का ध्यान तुरंत उधर चला गया। वो रेलिंग तक आया और नीचे देखा। गेट से अरमान की कार बाहर निकल रही थी। रेहान का चेहरा सख्त हो गया। उसे ये नहीं दिखा कि कार में फैजान बैठा हुआ था। उसके दिमाग ने तुरंत एक ही नतीजा निकाला, अरमान और नूर दोनों साथ निकल गए हैं। वो जल्दी से नीचे लॉन में आ गया। अब उसके मन में कोई शक नहीं बचा था, इतनी रात को उसके साथ चली गई। गुस्से और अपमान की एक तीखी लहर उसके अंदर उठी। अब उसके मन में नूर की छवि पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले अरमान, फिर साकेत। ये लड़की कैसी है? उसे पूरा यकीन हो गया था कि नूर चरित्रहीन है। गुस्से में वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। उधर जैसे ही रेहान नीचे गया, कुछ देर बाद छत के अंधेरे कोने से अरमान और नूर बाहर आए। नूर ने राहत की सांस ली, बच गए। अगर रेहान भाई को पता चल जाता कि मैं यहां हूं तो मेरा क्या बनता, उसने घबराई आवाज में कहा। अरमान हल्का सा मुस्कुराया, अब भाई जाकर सो जाएंगे, तुम डर मत। नूर वापस जाना चाहती थी, मगर अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। थोड़ी देर और बैठो। नूर छत के फर्श पर बैठ गई। वो अपने साथ किताबें भी ले आई थी। वो परेशान लग रही थी। तुम मुझे किताबों का कीड़ा क्यों बना रही हो, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। नूर ने गहरी सांस ली। तो क्या करूं, मेरे सेमेस्टर नजदीक हैं और मेरे अभी तक नोट्स भी तैयार नहीं हुए, अगर मैं फेल हो गई तो।
अरमान ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम सब कर लोगे। नूर हल्का सा मुस्कुरा दी।